जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय भूपाद जय शिल प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय शिल गुरुदेव गौरानीताय 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 जय गौरानीताय 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 जय गौरानीताय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजना ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರವನಚಾರಿ 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 ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಗೋಪಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿ ವರಧಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಗೋಪಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿ ವರಧಾರಿ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋಪಾಲ್ 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 ಜಯ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಜಯ ರಾಧಾ ಗಿರಿಧಿ ರಾಧಾ ಗಿರಿಧಾರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಲದೇವ ಸುಭದ್ರಾ ನಿತಾಯ ಗೌರ ಹರಿ ಬೋಲ ಹರಿ ಬೋಲ ಹರಿ ಬೋಲ ಹರಿ ಬೋಲ ಜಯ ಪ್ರಭುಪಾದ 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 ಜಯ ಜಯ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಯ ಜಯ ಗುರುದೇವ್ 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 ಜಯ ಜಯ ಗುರುದೇವ್ ಜಯನಿತೈಲಾ ಪ್ರವಿಷ್ಟೋಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಚಾರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಶತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಅಭಯ ಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವೃಂದ ಕಿ ಪ್ರೇಮ್ ಸೆ ಕಹೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ್ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಶ್ರೀ ಗೌರ್ ಭಕ್ತವೃಂದ ಕಿ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಕಿ ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ निताई गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम अध्याय नौवां स्कंद चौबीसवां अध्याय भगवान श्री कृष्ण नामक चौबीसवां अध्याय और श्लोक संख्या है 55 है ना 58। दयामूर्ति प्रभु ने मुझे कहा 54-55। उन्होंने कहा था 54-55। ठीक है, जो भगवान बुलाएंगे बोल देंगे। है क्या थी समझा नहीं मैं। अच्छा नहीं, पर उल्टा जाना अच्छा नहीं ना। चलिए जो भी है। अच्छा, इसका जो सारा इतना 55 श्लोक में तात्पर्य नहीं, सब इसी में दे दिया। लंबा छोड़ा दो पन्ने का। ठीक है, यत् माया चेष्टितम् पुंस स्थिति उत्पत्ति अप्ययाय हि अनुग्रह तत्निवृते आत्मलाभाय च इष्यते। यन्माया चेष्टितं पुंस यन्माया चेष्टितं पुंस स्थित्युत्पत्त्यप्ययाय हि स्थित्युत्पत्त्यप्ययाय हि अनुग्रहस्तनिवृत्तेरात्मलाभाय अनुग्रहस्ते निवृत्ते अनुग्रहस्त निवृत्ते आत्मलाभाय चेष्यते आत्मलाभाय चेष्यते। यन्माया चेष्टितं पुंस स्थित्य उत्पत्त्यप्ययाय हि अनुग्रहस्त निवृत्ते आत्मलाभाय चेष्यते।
उत्पत्ति
గృహస్థం
నివృత్తే
ఆత్మలాభాయ
माता में माता में से कोई बोल चाहे
या
जो भी
माया चेष्टितम
भगवान द्वारा बनाए गए प्रकृति के नियम पुंस जीवों की स्थिति जीवन अवधि उत्पत्ति जन्म अप्ययाय संहार के लिए ही निसंदेह अनुग्रह कृपा तत्निवृत्ते जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने के लिए विराट शक्ति की सृष्टि तथा प्राकट्य आत्मलाभाय भगवत धाम जाने के लिए च निसंदेह इष्यते इसी उद्देश्य से सृष्टि हुई। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय शरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज के द्वारा। शिल प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार है, भगवान अपनी माया के माध्यम से इस विराट जगत के सृजन पालन तथा संहार का कार्य करते हैं, जिससे वे बद्ध जीव जिससे वे जीव का उद्धार अपनी दया से कर सके और जीव के जन्म मृत्यु तथा भौतिक जीवन अवधि को रोक सके। इस तरह वे जीव को भगवत धाम लौटने में सक्षम बनाते हैं। तात्पर्य, भौतिकवादी लोग कभी कभी पूछते हैं कि ईश्वर ने जीवों को कष्ट के लिए भौतिक जगत के सृष्टि क्यों की। भौतिक सृष्टि निश्चय ही उन बद्ध जीवों को कष्ट पहुंचाने के लिए है जो भगवान के अंश स्वरूप है, जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवत गीता के 15वें अध्याय में पुष्टि की है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्ठान्द्रियाणि प्रकृतिस्थाने कर्षति। इस बद्ध जगत में जीव मेरे नित्य अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे मन समेत छहों इंद्रियों से कठिन संघर्ष कर रहे हैं। सारे जीव भगवान के अंश रूप हैं और गुणात्मक रूप से भगवान के ही समान हैं, किंतु मात्रात्मक रूप से उनमें महान अंतर है, क्योंकि भगवान असीम हैं और जीव सीमित हैं। इस प्रकार भगवान में असीम अल्हादिनी शक्ति होती है, किंतु जीव में यह सीमित होती है। आनंदमयो अभ्यासात वेदांत सूत्र भगवान तथा जीव दोनों ही गुणात्मक दृष्टि से आत्मा होने के कारण शांति पूर्वक भोग करना चाहते हैं, किंतु जब भगवान का अंश दुर्भाग्यवश स्वतंत्र रूप से कृष्ण के बिना भोग करना चाहता है तो उसे भौतिक जगत में डाल दिया जाता है, जहां वह अपना जीवन ब्रह्मा से प्रारंभ करके धीरे धीरे एक चींटी या मल के कीट के पद तक उतार दिया जाता है। यही मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति हैं। जीवन के लिए महान संघर्ष चलता है, क्योंकि माया द्वारा बद्ध किया गया जीव पूरी तरह प्रकृति के वश में रहता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, अहंकार की मदद। मनुष्य अपने सीमित ज्ञान के कारण सोचता है कि वह इस भौतिक जगत में भोग कर रहा है। मनस्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति, वास्तव में वह प्रकृति के पूर्ण वशीभूत रहता है, फिर भी वह अपने को स्वतंत्र मानता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जब वह चिंतन परक ज्ञान के द्वारा ऊपर उठकर ब्रह्म से तदाकार होना चाहता है तो यही रोग चलता रहता है। आरुह्य कृच्छेण परम पदम तत् पतन्ति अधः, उस परम पद को प्राप्त करके भी वह पुनः भौतिक जगत में आ गिरता है। इस तरह बद्ध जीव इस जीवन के लिए इस जगत में महान संघर्ष करता है। अतएव भगवान उस पर अनुग्रह के कारण इस जगत में प्रकट होते हैं और उसे शिक्षा देते हैं। इस प्रकार भगवान भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म का हास होता है और अधर्म का प्राधान्य होता है तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। असली धर्म कृष्ण की शरण ग्रहण करना है, लेकिन विद्रोही जीव कृष्ण की शरण न ग्रहण करके कृष्ण जैसा बनने के लिए संघर्ष के दौरान अधर्म में लग जाता है। अतएव कृष्ण अनुग्रहवश इस सृष्टि की रचना जीव को अपनी असली स्थिति समझने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु उत्पन्न करते हैं। भगवद गीता तथा ऐसे ही वैदिक ग्रंथ इसलिए भेंट किए जाते हैं जिससे जीव कृष्ण से अपने संबंध को समझ सके। वैदेश्च सर्वर अहम एव वैद्यः। ये सारे वैदिक ग्रंथ मनुष्य को यह समझाने के लिए हैं कि वह क्या है, उसकी असली स्थिति क्या है और भगवान से उसका क्या संबंध है। यही ब्रह्म जिज्ञासा है। हर बद्ध आत्मा संघर्षरत है, किंतु मानव जीवन उसे सबसे अच्छा अवसर प्रदान करता है कि वह अपनी स्थिति को समझे। इसलिए इस श्लोक में अनुग्रहस्थ निवृत्ते कहा गया है, जो सूचित करता है कि जन्म मृत्यु के चक्र के मिथ्या जीवन को समाप्त हो जाना चाहिए और बद्ध आत्मा को शिक्षा दी जानी चाहिए। सृष्टि का यही प्रयोजन है। जैसा कि नास्तिक सोचते हैं कि यह सृष्टि मनमाने ढंग से नहीं उत्पन्न हुई। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर अनीश्वरम अपरस्परम संभूतम कि मन्यत काम हेतुकम। उनका कहना है कि यह जगत असत्य है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियंत्रण ईश्वर द्वारा नहीं होता है, यह तो कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम वासना के अतिरिक्त और अन्य कोई कारण नहीं है। नास्तिक लोग सोचते हैं कि ईश्वर नहीं है और यह सृष्टि वैसे ही संयोगवश बन गई है। जिस तरह स्त्री तथा पुरुष का मिलन संयोग की बात होती है और तब स्त्री गर्भवती हो जाती है और संतान को जन्म देती है, लेकिन वास्तव में यह तथ्य नहीं है। तथ्य तो यह है कि सृष्टि के पीछे एक प्रयोजन है, वह है बद्ध जीव को उसकी मूल चेतना कृष्ण भावनामृत तक लौटने का अवसर प्रदान करना, जिससे वह भगवत धाम वापस जाकर आध्यात्मिक जगत में पूर्णतया सुखी रह सके। इस जगत में बद्ध जीव को अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का अवसर प्रदान किया जाता है, किंतु साथ ही उसे वैदिक ज्ञान द्वारा सावधान किया जाता है कि यह संसार सुख का असली स्थान नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र को बंद करना होगा। अतएव हर मनुष्य को चाहिए कि सृष्टि में आकर कृष्ण को तथा कृष्ण से अपने संबंध को समझें और इस तरह भगवत धाम को वापस जाएं। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेट हो गया और गुरुदेव को प्रार्थना की मतलब सब आ गया। हम लोग जो सब यहां बैठे हैं और जो भी कर रहे हैं कितने ही वर्षों से, यदि आज की शिक्षा जो है यदि उसको एक या दो वाक्य में यदि समाप्त करना है तो वो यही है कि आज की ये जो शिक्षा है भागवतम से, वो इसलिए कि हम लोग जो यहां इतने वर्षों से प्रयास कर रहे हैं कुछ भजन साधन का, कुछ भक्ति करने का, तो वो यही है कि भगवान का जो अनुग्रह है, अनुग्रहस्त निवृत्तेर आत्मलाभाय चेष्यते च इष्यते, आत्मलाभाय च इष्यते, कि निसंदेह जो यहां पर अंतिम शब्द है आत्मलाभाय च इष्यते, कि निसंदेह भगवान ने अनुग्रह करके हम लोगों को भगवत धाम वापस लौटने का सुअवसर प्रदान किया है। और हम लोग जो ये शिक्षाते हैं प्रतिदिन नित्यम भागवत सेवया, भगवान के अर्चा विग्रहों के दर्शन, कीर्तन, अपराध रहित नाम जप, नियमों का पालन, एकादशी आदि व्रतों को पालन करना, ये जो सब कर रहे हैं वो इसलिए कि भगवान की ये जो कृपा बरसी है हम पर, वो उसे अपनाकर भगवत धाम लौट चले। यही आज की शिक्षा का उद्देश्य। तो यहाँ समाप्ति कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। क्या करें, आगे बढ़। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक बात है। हर व्यक्ति चाहे आस्तिक हो या नास्तिक, अपने जीवन में कभी दर्पण के सामने खड़े होकर या कभी एकांत में, सुखी या दुखी व्यक्ति कोई भी, अपने जीवन में एक बार या अधिक बार, एक से अधिक बार ये सोचता जरूर है। जो भी मनुष्य है, जो भी है, जिस किसी भाषा का हो, जिस किसी प्रांत का हो, जिस किसी राज्य का हो, जिस किसी राष्ट्र का हो, एक बार तो जरूर सोचता है कि आखिर में ये है क्या, मैं कौन हूं और मैं कहां जाऊंगा, ये जरूर सोचता है। यदि वो सोचता नहीं है तो वो पशु है, क्योंकि पशु नहीं सोचता है। और सोचने के लिए ही, विचार करने के लिए ही एक जीव को उत्क्रांति के नियम के द्वारा उसको प्रमोशन देकर उसको मनुष्य जीवन दिया जाता है, उत्क्रांति के नियम को देकर। तो निम्न से निम्न योनि में है, यहां पर जैसे बताया गया तात्पर्य में कि ब्रह्मा जी के पद से लेकर मल के कीड़े तक उसका पतन होता है इन 84 लाख योनियों में जीव का। तो ये ब्रह्मा जी का ये जो उत्क्रांति का जो नियम है, वो पहले जीव की पतन की शुरुआत में टुवर्ड्स डाउनफॉल, पतन की ओर जाता है। और जब वो अत्यंत निम्न से निम्न, पतित से पतित, नीच योनि तक पहुंच जाता है मल के कीड़े आदि, तो वहां से फिर पुनः वापस अपवर्ड्स, ऊपर की ओर जीव को वापस मौका दिया जाता है कि वापस वो ब्रह्मा जी के पद तक जाए, या देवता बन जाए, या दानव बन जाए। अपरे मिते स्तन्या प्रकृतिम विद्धिम में परा जीव भूतो महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीव ये जितना भी प्रयास कर लें, परंतु ये परा और अपरा प्रकृति के द्वारा मेरे ही अधीन वो रहता है। जीव भूतो महाबाहो, भगवान जो है ये वो महाबाहु पूरे सभी जगत को, परा और अपरा जगत, भौतिक सृष्टि, आध्यात्मिक सृष्टि, सभी भगवान अपने अंदर ही धारण करते हैं। और उसमें जीव घूमता रहता है अज्ञानवश। वैसे परा प्रकृति आध्यात्मिक जगत में अज्ञानवश नहीं होता, वहां तो ज्ञान होने के बाद ही प्रवेश करता है। भौतिक जगत की बात है कि आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन मुपेत्य तु कौनेय पुनर्जन्म न विद्यते। कि यदि जीव इस उत्क्रांति के नियम के द्वारा यदि ब्रह्म लोक तक भी पहुंच जाए, ब्रह्मा जी के लोक तक भी पहुंच जाए, तो भी क्षीणम पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति, कि वो जैसे ही पुण्य की बैंक बैलेंस खत्म हो जाती है तो वो मृत्यु लोक में वापस आ गिरता है। पर यहां तक समझ में नहीं आया कि कनेक्शन क्या है इस श्लोक का। बात यह है कि जीव पतन हुआ और पतन होने से वापस ऊपर उठा, वापस पतन हुआ, वापस ऊपर उठा। कभी कभी बीच में भी कहीं कहीं चला जाता है, आ ब्रह्म भुवनान लोकान, कि ये लोक से ब्रह्मलोक तक अर्थात पृथ्वी के ब्रह्मलोक तक या पृथ्वी से लेके सूतल रसातल पाताल लोक तक भी यदि वो चला जाए, कहीं भी चला जाए, यदि ब्रह्मलोक या स्वर्गलोक में भी चला जाए, तो उसने वो कैसे जा सकता है ब्रह्मलोक या स्वर्गलोक में कैसे जा सकता है? भाई कुछ पुण्य कर्म किया है, कुछ दान पुण्य किया है, तो ब्रह्मा जी के लोक तक चला जाता है या स्वर्गलोक में चला जाता है। उसकी प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया कुछ नहीं है, उसकी इच्छा है स्वर्ग का सुख भोगना या ब्रह्मा जी का सुख भोगना, तो इसके अनुरूप वो यज्ञ दान तथा तपस्या करता है। तो उसके द्वारा यज्ञ दान तथा तपस्या के द्वारा उसके पास बहुत सारे पुण्य की राशि जो है संचित हो जाती है, बैंक बैलेंस बहुत बढ़ जाती है, उसके पास पुण्य की राशि संचित हो जाती है, और इस राशि के अनुसार वो ऊपरी लोक में उसका गंतव्य होता है, वो पहुंचाया जाता है कि जाओ ऊपर के स्वर्ग आदि लोकों में जाकर सुख भोगो, प्रचुर सुख भोगो। लेकिन कितने दिन? जितने दिन आपकी पुण्य की राशि है उतने दिन। जब पुण्य की राशि खत्म हो गई, क्षीणम पुण्ये मृत्युलोके विशन्ति, वापस मृत्युलोक में भेज दिया जाता है, जाओ मृत्युलोक अर्थात यहां पृथ्वीलोक में, अब वापस पृथ्वीलोक में जाओ। और यहां पर क्या होता है, किसी अच्छे धनी मानी कुल में, किसी उच्च कुल में जन्म होता है, क्योंकि वह स्वर्ग से आया है ना, वो स्वर्ग से आया है तो उसको धनी मानी कुल में जन्म दिया जाता है। और जो नरक में जाता है बहुत पाप कृत्य के द्वारा, जो नरक में बहुत दुख भोगता है, उसको उसके कर्म तथा अंतिम मानसिकता के अनुसार उसको ये मलमूत्र के कीड़े या रेंगने वाले सांप सरीसृप, हाँ जो रेंगने वाले सांप आदि जितने भी कीड़े हैं या जंतु हैं वो, या फिर जलचर पशु योनि जल में मछली मगरमच्छ आदि, या फिर जमीन पे दौड़ने वाले पशु या आकाश में उड़ने वाले पशु या प्राणी ऐसे बनाए जाते हैं, उसे पशु योनि प्राप्त होती है। और वहां से फिर पशु योनि प्राप्त होने के बाद उत्क्रांति के नियम के अनुसार, डार्विन का नहीं भागवत का उत्क्रांति, डार्विन का उत्क्रांति का नियम कहता है कि मनुष्य पहले बंदर था, एपमैन बोले वो ऐसे था, और वो ऐसे कुछ प्रमाण देता है, कुछ ऐसे मूर्ख जैसे प्रमाण देता है कि मनुष्य पशु से ऐसे अलग होता है, मनुष्य को अंगूठा है, अंगूठा हाथ और पैर में अंगूठा है, पशु को कुछ पशु को उंगली या ऐसे कुछ हाथ पैर होते हैं, पर मनुष्य को अंगूठा है, तो बंदर को भी अंगूठा है। हर वो प्रक्रिया मनुष्य और बंदर की एक समान है, केवल बंदर में फुर्ती ज्यादा है उछल कूद करने की या छलांग लगाने की, उतनी फुर्ती या उतनी क्षमता मनुष्य में नहीं है बंदर जितनी। और मनुष्य बोल सकता है और बंदर बोल नहीं सकता, मनुष्य सोच सकता है और बंदर इतना सोच नहीं सकता। तो मनुष्य क्या सोच सकता है? अनुग्रहस्ता, अनुग्रह कि भगवान का अनुग्रह क्या है, अनुग्रह अनुग्रह तत् निवृत्ते कि अब बस अब मुझे स्टॉप कर देना चाहिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है और इसका उपाय क्या है, मुझे मरना नहीं है। वास्तव में यदि हम अपने आप से पूछेंगे एकदम प्रामाणिकता से, यदि मैं अपनी बात कहूं तो मेरी अभी तक ये पूर्ण दृढ़ एकदम प्रचुर इच्छा है कि मुझे मरना नहीं है। भागवतम पाठ करता हूं, भागवतम की शिक्षा देता हूं, शिक्षा सुनता हूं, लेकिन मरने की इच्छा नहीं है अभी तक, या अभी तक इस उम्र तक जितना अब तक बूढ़ा या जवान जैसे दिख रहा हूं इससे ज्यादा और बूढ़ा दिखने की इच्छा नहीं है। यह हमारी समस्या है, यह हमारा अपनी अविद्या है, यह हमारा अपना अज्ञान है कि अभी भी इतना अविद्या इतना अज्ञान हमारे अंदर विद्यमान है अभी भी। तो हम सब अपने अपने हृदय रूपी दर्पण में झांक के देख सकते हैं कि मेरे अंदर अभी भी इतनी अविद्या या इतना अज्ञान अब कब तक है। तत् निवृत्ते, अभी तक क्या मैं निवृत्त हुआ हूं? और वो निवृत्ति क्या है? हमारी अपनी वांछाएं, हमारी अपनी वासनाएं, हमारी अपनी कामनाएं, ये अभी तक मरना नहीं है या मृत्यु का भय जो है ये क्यों है या इससे अधिक और बूढ़ा क्यों नहीं होना है, तो इसका कारण है कि अभी भी हमें ये भोग भोगने की इच्छा है और ये भोग हमें प्राप्त हो इसलिए ऐसे कर्म करना है। और हो सकता है कि वो कर्म भगवान की बनाई हुई प्रकृति और भगवान के बनाए हुए नियम के विरुद्ध हो सकते हैं, और इसलिए यहां पर भगवत गीता का वो श्लोक दिया, ममे वामशे जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थाने कर्षति, इसलिए यह श्लोक दिया इस तात्पर्य में। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा जीव है, मेरा, भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा, मेरा जीव है, मेरा अपना, ममे वामशे, पर कहां है जीवलोके, जीव भूत सनातन, वो सनातन शाश्वत जीव है, कभी नहीं मरने वाला, किंतु मन षष्ठानि इंद्रियाणि, पांच ज्ञानेन्द्रियां और छठे मन के साथ वो इस प्रकृति को भोगने के लिए घोर संघर्ष कर रहा है, घोर संघर्ष। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति, कर्षति का अर्थ है घोर संघर्ष। घोर संघर्ष क्यों कर रहा है, पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं उसके पास पावरफुल, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, दो आंखें, दो कान, दो नाक, एक जिह्वा और एक त्वचा, जिसके द्वारा हमें शब्दों का, स्पर्श का, रूप का, रस का और गंध का ज्ञान होता है। तो मैं अच्छे से अच्छी सुगंध सूंघना चाहता हूं, है ना, आजकल हर साबू हर क्रीम में अच्छी खुशबू है, इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस के साथ फलाना साबू फलाना क्रीम उसमें अच्छी गंध है जिससे आप मदहोश हो जाओगे, है ना, यही विज्ञापन बताया जा रहा है ना, आप ब्रह्मचारियों को शायद नहीं पता होगा, सब गृहस्थी बैठे उनको पता है, या हर जगह वो किताबों में, पेपर में, मैगजीन्स में, टीवी में, होर्डिंग्स बड़े बड़े रोड पर यही लिखा है कि आपको ऐसी गंध मिलेगी आप मदहोश हो जाओगे या आपको तेजक हो जाओगे, इतनी ऐसी गंध है हमारे पास, इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस। फिर रूप का दर्शन, उसका वर्णन करने की जरूरत नहीं, वो तौबा तौबा है, चारों ओर फैला हुआ है रूप का दर्शन। फिर शब्द, तो शब्द के द्वारा चाहे म्यूजिक हो, चाहे कमेंट्री हो क्रिकेट की या जो भी हो, एक्स वाई जेड, हमें वही अच्छा लगता है। क्यों वही अच्छा लगता है, हमें बहुत ही सुंदर मुलायम स्पर्श अच्छे लगते हैं, अच्छे से अच्छा गद्दा, अच्छे से अच्छी गाड़ी के सीट कवर, सब कुछ अच्छा से अच्छा, हमें मुलायम स्पर्श चाहिए, स्पर्श, शब्द, रूप, रस, हर चीज का एक बेसुमार स्वाद होना चाहिए, बहुत ही स्वादिष्ट होना चाहिए। क्यों, ये इतनी प्रचुर भोगने की इच्छा क्यों है, क्योंकि वो इच्छा भगवान में है और हम भगवान के अंश हैं। ये इच्छाएं जो हाई क्लास जो इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं भगवान की है, भगवान के अंदर हैं और हम उनके अंश हैं, इसलिए ये इच्छाएं हमारे अंदर ही हैं। जब भगवान ने कहा कि ममे वामशे, जब भगवान के ही हम अंश हैं तो जो कुछ भगवान में है वो भगवान के अंश में होना जरूरी है। फिर भी भगवान कहते हैं प्रकृति स्थाने कर्षति, क्यों प्रकृति स्थाने कर्षति है, क्योंकि जहां पर हम ये इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं, ये इच्छा जहां पर हम पूर्ण करना चाहते हैं इस भौतिक जगत में, वो जगत हमारी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं है। तो आप कहोगे भौतिक जगत बनाया ही इसलिए कि जीव की इच्छा हो सके, पूर्ण हो सके, भौतिक जगत बनाया ही इसलिए है कि वो जीव की इच्छा पूर्ण हो सके, तो ये कैसा है कि भौतिक जगत जीव के लिए नहीं है और फिर ऊपर से नीचे भटकता रहा ब्रह्म भूनान लोकान, ये सब गड़बड़ है। नहीं, यद्यपि ये भौतिक जगत हमारी इच्छा के लिए, तो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो जेल बनाया जाता है उसमें खाने पीने की, कपड़ा पहनने की, सोने की, नहाने की सब सुविधा है, तो क्या वह रह जाना चाहिए, तो क्या वह रह जाना चाहिए कि चलो भाई मैं एक बहुत सीनियर कैदी हूं, मेरा तो आजीवन कारावास है, हाँ आजीवन कारावास, तो चलो अब मेरी जो जेल की जो कैबिन है या बंकर जो भी बोला जाता है पता नहीं, मेरा जो स्थान है जेल में उसके टॉयलेट में एक स्पार्टेक्स टाइल्स डाला जाए और मुझे एक डनलप का गद्दा दिया जाए और मुझे खाने में प्रतिदिन पनीर सब्जी होना जरूरी है। इस्कॉन फीस्ट मीन्स पनीर सब्जी कंपलसरी, अगर पनीर सब्जी और गोभी के पकौड़ा नहीं तो इस्कॉन फीस्ट अधूरा है। तो ये पनीर सब्जी होना जरूरी है और पकोड़ा होना जरूरी है और बाकी तो सब आइटम का लिस्ट तो है ही है कॉमन, और आइटम बदलना चाहिए। तो क्या आज हम जो सब जेल के बाहर है क्या हम कहेंगे कि वो व्यक्ति बुद्धिमान है? क्या हम कहेंगे कि चलो इनको ये सब सुविधा दी गई है तो क्या वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो जेल के अंदर सड़ रहा है? उसे बाहर की दुनिया में जाने का अधिकार नहीं है, उसे मुक्त नहीं किया जाएगा। हो सकता है वहां प्ले ग्राउंड हो जाओ, फुटबॉल क्रिकेट आदि भी खेल सके, फिल्म भी दिखाया जाता हो। बोले यार बाहर तो मेहनत करके कमा के ये सब करना पड़ता है, उसे अच्छा कोई क्राइम कर दो गुनाह कर दो, जेल में सब सुविधाएं वहीं रहो। बुद्धिमान या सज्जन व्यक्ति क्या चाहता है, क्या चाहता है बताइए? वो जेल में रहना चाहेगा या बाहर मुक्त अपना एक स्वतंत्र एक सज्जन का एक भद्र नागरिक का जीवन जीना चाहेगा? अपने आप को जेल का कैदी नहीं बोलना चाहेगा ना, चाहे वहां कितनी भी सुविधा हो। जेल में सुविधाएं हैं आजकल, मैदान है, खेलने के मैदान है, सब कुछ है, और कोई ऐसा भी नहीं है कि वहां चक्की पीसवाया जाएगा जबरदस्ती। आपको पीसना है तो पीसो, उसका पगार मिलेगा बहुत ही कम, और नहीं तो आपको वैसे ही पड़े रहो। तो आदमी जो कंटाल जाता है इसलिए कोई चक्की पीसता है, कोई पत्थर तोड़ता है, कोई बगीचा बनाता है, कोई कालीन बनाता है, ऐसे अलग अलग काम में उनको सिखाया जाता है ताकि बाहर जाके वो एक सज्जन नागरिक की तरह काम करे, मेहनत करे और अपनी रोटी कमाए। तो ये है जेल की प्रकृति, जेल के नियम। अगर उन नियमों को तोड़ा जाए कि इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे काम करना है, ये जो सारे जेलर के द्वारा नियम बनाए गए हैं, यदि वो नियम को तोड़ेगा और कोई अपनी मनमानी करेगा तो उसको और कितनी सजा बढ़ेगी और उसको कितने डंडे पड़ेंगे और उसको कितना और जंजीर में जकड़ा जाएगा। तो चिल्लाएगा और मार काट करेगा और मंत्री को, एमएलए को, विधायक को लेटर लिखेगा कि यहां जेल में अन्याय है, मनुष्य वो अंतर्राष्ट्रीय मानव संस्था को लिखेगा, मनुष्य का शोषण हो रहा है ना, ऐसे ऐसे बहुत कुछ फिर और नाटकबाजी करेगा। लेकिन आप सीधे साधे अगर कोई गुनाह हो गया जेल में है, नियमों का पालन कीजिए, सरकार आपको छोड़ देगी। ये कहेंगे सरकार कृपा करेगी, अनुग्रह करेगी, और क्या होगा, ततन निवृत्ते, आपको इस जेल की प्रवृत्ति से निवृत्त करके बाहर छोड़ दिया जाएगा। किसके लिए? आपके लाभ के लिए, आत्मलाभाय च इष्यते, है ना। तो इसलिए आपके कल्याण के लिए, ताकि आप दूसरी बार गुना ना करो, समाज में आंतक भय ना फैला दो, इसलिए आपके कल्याण के लिए आपको यह सजा दी जाती है। इसीलिए यह जो भौतिक जगत जो बनाया गया है, हम सब जो उद्दंड या बागी जीव जो हैं, इन लोगों को ठीक करने के लिए ये भौतिक जगत है जिसमें वर्णाश्रम धर्म के नियम बताए गए हैं। क्या वर्णाश्रम धर्म है? चार वर्ण चार आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो ये चार वर्ण के लोगों को क्या क्या करना है, कैसे रहना है? ब्रह्मचारी था, वानप्रस्थ संन्यास। हर वर्ण के लोगों को क्या नियम है, कैसे चलना है, वो नियम कानून बताए गए। किस लिए? यही कि आत्मलाभाय च इष्यते। यदि कोई वर्णाश्रम धर्म का भी पूर्ण पालन करें तो वो भी भगवत धाम जा सकता है। एक शूद्र, प्रभुपाद जी भी उदाहरण देते हैं कि पाखंडी पंडित या पाखंडी ब्राह्मण से, ढोंगी साधु से अच्छा एक प्रामाणिक भंगी है जो रास्ता साफ करता है। वो रास्ता साफ करते हुए भी भगवत धाम जा सकता है यदि वो प्रामाणिक है अपने कार्य में, यदि वो अपने जीवन में ईमानदार है तो वो रास्ता साफ करके भी भगवत धाम जा सकता है वो, पर उसमें प्रामाणिकता होनी चाहिए, एक पाखंडी ढोंगी साधु से अच्छा है। तो इसलिए ये भौतिक जगत में हम लोग क्या करते हैं कि नियम कानून को तोड़ते हैं। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि सब कुछ भगवान का है, हम भी भगवान के हैं, सारी सृष्टि भगवान की है, और आप कहते हो कि भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, तो फिर हम लोग इतना दुख क्यों भोगते हैं? क्योंकि हम भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा जबरदस्ती घुसेड़ देते हैं, अपनी इच्छाओं को लादते हैं इस प्रकृति को भोगने के लिए। पर भगवान ने तो कहा कि ये प्रकृति को आप भोग नहीं सकते, देवी ऐसी मम माया, देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्तिते। आप मेरी जो प्रकृति को भोगना चाहते हो, सावधान, ये ऐसा नहीं है कि आप इसको भोग लोगे। हम क्यों नहीं भोग सकते हैं? हम तो प्रकृति से श्रेष्ठ हैं, अपरा प्रकृति से हम तो श्रेष्ठ हैं जीवात्मा, फिर भी क्यों नहीं भोग सकते हैं? तो जैसे ही हम इस प्रकृति को भोगने की इच्छा से इस प्रकृति के संसर्ग में आते हैं, वैसे ही हम प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि हमने भगवान से विद्रोह किया। तो जैसे ही हमने भगवान से विद्रोह किया, वैसे ही हमारी जो परा प्रकृति, हमारी जो शक्ति है, जो कहा है यहां पर तात्पर्य में कि भगवान की अलादिनी शक्ति असीमित है और हमारी सीमित है, तो हमारी वो सीमित अलादिनी, हमारी भी जो परा प्रकृति है, हमारी शक्ति है इस अपरा प्रकृति, इस भौतिक जगत से भी पावरफुल, वो भगवान से विद्रोह करके, भगवान से अलग होकर इस भौतिक जगत को भोगने आते हैं, तो हम अपनी वो क्षमता या अपनी वो शक्ति खो बैठते हैं, और इसलिए हम इस भौतिक प्रकृति को भोग नहीं सकते, क्योंकि ये भी दैवी गुणों वाली है। और इसलिए ये दैवी गुणों वाली प्रकृति को भोग नहीं सकने के कारण हम यहां मन षष्ठान इंद्रियाणि कर्षति घोर संघर्ष करते हैं, और इस घोर संघर्ष में हम इतने उलझ जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं, इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने हमारी मति मंद हो जाती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हम क्या करें, हम इसको भोग ही नहीं सकते। हमारी इच्छाएं प्रचुर हैं, तो जब पत्ता भी नहीं हिलता है तो हम इतना दुख भोग रहे हैं। तब बताइए कि इतने सारे ग्रंथ हैं, इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे कीर्तन हैं, सब कुछ व्यवस्था है, भगवान हमें समझाने के लिए, हमारी समझ आने के लिए इतना प्रयास करते हैं, क्या कहीं लिखा है कहीं बीड़ी पियो? तुम बीड़ी पीते हैं कि नहीं? ये हमारी इच्छा है। कहीं लिखा है मांसाहार करो, हम मांसाहार करो। कहीं इच्छा है हम शराब पियो, हम शराब पीते हैं। कहीं लिखा है व्यभिचार करो, हम व्यभिचार करना चाहते हैं। कहीं लिखा है जुआ खेलो, हम जुआ खेलना चाहते हैं। तो इसलिए भगवान की इच्छा है कि हम वापस जाएं, लेकिन भौतिक भोग भोगना है तो भौतिक भोग भोगने के लिए भौतिक जगत बनाया, पर उसके लिए भी नियम कानून बनाया। उस नियम कानून को अगर हम पालन करेंगे तो एक दिन हमें लाइट हो जाएगी, क्लिक हो जाएगा, हमें ज्ञान हो जाएगा कि यह मेरे रहने का स्थान नहीं। इसलिए वो नियम है वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म बनाया, उसका पालन करेंगे तो हमें ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा तो हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की भक्ति के तो हमें पता चल जाएगा कि हमें भगवत धाम वापस जाना है, ये हमारे लिए है ही नहीं। तो इसलिए भगवान ने कितनी बड़ी महत कृपा की कि इस भौतिक जगत दुखालय में शाश्वतम, जिसमें इस दुखालय या शाश्वतम जगत में आदि भौतिक कलेश, जिसमें मच्छर काटते हैं, रोग होता है, बीमारियां होती है, एक्सीडेंट होता है, बुढ़ापा आता है, मृत्यु होती है, आदि भौतिक कलेश, आदि अध्यात्मिक कलेश, कोई हमारा अपमान कर दिया, मन दुखी हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया, मन चिंतित है, बेटी को ससुराल में दुख है, मन में चिंता है कैसे इसका निवारण करें, आदि अध्यात्मिक कलेश कई प्रकार के, और आदि दैवी कलेश, देवताओं के द्वारा दिया गया कलेश, देवताओं के द्वारा दिया गया क्लेश, भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा, अकाल, ये सब। अरे भाई, अभी अभी तो आपने कहा कि ये भौतिक जगत वर्णाश्रम धर्म नियम कानून बनाने के लिए है, फिर ये क्लेश क्यों? ये क्लेश इसलिए कि आपको यहां से हटाने के लिए, कि हटो हटो, आप मेरे अंश हो, मेरे धाम में आ जाओ, मेरे साथ रहो, मेरे अनुगत्य रहो, आपके वास्तविक स्वरूप को पहचानो, जीवेरे स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, इस बात को पहचानो। उदाहरण के लिए, यदि एक सेवक एक बहुत बड़े बंगले में रहता है अपने मालिक के साथ, तो मालिक के नियम कानून का पालन करेगा तो वो भी बहुत बढ़िया खाना खाता है ना, मालिक खाने के बाद खाता है तो हम लोग भी खाते हैं मालिक के खाने के बाद महाप्रसाद, बढ़िया बढ़िया, वही पनीर, वही पकोड़े, है ना, मस्त स्ट्रॉबेरी बासुंदी है ना, तो मालिक ने खाया हम भी खाते हैं, मालिक के लिए फर्स्ट क्लास रथ सजाया जाता है परसों ही, है ना, फर्स्ट क्लास रथ में बैठ के एकदम राजा की तरह हटते हैं, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई सिग्नल नहीं, हटो मालिक आ रहे हैं, तो हम भी मालिक के साथ उसी गाड़ी में बैठते हैं, रोल्स रॉय, बेंटले, मर्सिडीज, सब दो दो करोड़ की गाड़ियां, हम भी बैठ सकते हैं, मालिक थोड़ी बोलेगा तुम मेरे पीछे ऑटो रिक्शा में आओ या ट्रेन में आओ, मालिक जिस गाड़ी में बैठेगा बेंटले या रोल्स रॉय या मर्सिडीज, हाँ, दो दो करोड़ की गाड़ियां में, तो नौकर भी बैठ जाएगा, है, लेकिन नौकर कहेगा नहीं नहीं बेवकूफ, मैं बैठूंगा पहले, हट जा बाजू, भगवान भगवान तो कोई है ही नहीं, ये नास्तिक विचार जो इस तात्पर्य में लिखा है कि नास्तिक लोग इस तरह से दुख भोगते हैं, भगवान है ही नहीं, मेरे नसीब से, मेरी मेहनत से, क्योंकि मैं घर का पूरे बंगले की सफाई करता हूं, इलेक्ट्रिक बिल भी भरने जाता हूं, और सारे राशन भी मैं लाता हूं, बाजार से सब्जी भी मैं लाता हूं, मालिक का सारा काम मैं करता हूं, इसलिए अब ये गाड़ी में बैठूंगा, मालिक का क्या अधिकार है, ये मूर्खता है। तो अगर वो ऐसा करने जाएगा तो मालिक भी डांटता है और मालिक का कुत्ता भी काटता है, भाव भाव क्या करता है। तो इसीलिए ये जो मालिक है, सुप्रीम मालिक, उसके जो देवतागण है वो हमको तीन प्रकार से भेजते रहते हैं, आदि भौतिक कलेश, आदि आध्यात्मिक कलेश और आदि दैवी कलेश, है ना, कि भाई सावधान हो जाओ, ठीक हो जाओ, गड़बड़ मत करो, अच्छी तरह से रहो, है ना। तो ये बहुत ही सरल बात है, फिर भी मालिक इतने दयालु हैं कि उन्होंने क्या किया जो इस तात्पर्य में आया कि इतना व्यवस्था करने के बाद भी यदि हम वर्णाश्रम का पालन भी करता रहे, ऐसे ही सूखा सूखा, चलो लिखा है शास्त्र में लिखा है हम ब्राह्मण रहे, हम क्षत्रिय रहे, हम वैश्य रहे, हम शूद्र रहे, जहां जन्म लिया वहीं काम करते रहे, लेकिन इसका उत्थान कैसे, उत्थान का भी तो कोई प्रावधान होना चाहिए, कोई व्यवस्था होनी चाहिए। तो भगवान इतना दयालु है, अनुग्रहस्ते निवृत्ते, ये वर्णाश्रम धर्म को भी त्याग करके अभी हमें भगवान के पास जाना है, और वो है भक्ति मार्ग। उसके लिए स्वयं भगवान, तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने दिया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, क्योंकि सज्जन लोगों को पीड़ित करने के लिए दुर्जन है, और दुर्जन दुर्जनों की दुर्जनता क्यों है, क्योंकि वो ये सब माने बगैर अपना अनुशासन चलाना चाहता है, अपना राज्य, अपना अधिकार, अपनी इंद्रिय तृप्ति। इसलिए कोई सोसाइटी होती है या कोई नगर होता है, कोई गांव, कोई शहर, कोई राज्य या कोई राष्ट्र या कोई अंतरराष्ट्रीय, सब प्रकार की संस्था है ना, मकान की सोसाइटी से लेके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, यूनो वगैरह, है ना, कि भाई हम इसको कंट्रोल करेंगे, सब कंट्रोलर बनना चाहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं सब मूर्खता है, कंट्रोलर मत बनो, ये मेरी प्रकृति है, ये अहंकार है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। इस तात्पर्य में श्लोक आया कि सारे मेरी प्रकृति और उनके तीन गुणों द्वारा सब कुछ हो रहा है, तू बीच में कहां से बोल दिया कि ये सब कुछ मेरे द्वारा हो रहा है। चलो किसान ने खेत को जोत कर बीज बो दिया, लेकिन पानी न गिरे तो, हवा न चले, सूर्य प्रकाश न हो तो होगा, बीज में से धान होगा, वो कौन करता है, किसान करता है, हवा, सूर्य प्रकाश, चंद्रमा की रोशनी और पानी कौन गिराता है, भगवान। तो जीव को तो अपने अच्छे कर्म करने का सिखाया जाता है, इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से जो विमूढ़, जिसकी बुद्धि खत्म हो चुकी है, मूर्ख है, वो सोचता है करता हम, मैं करता हूं, करता हम इति मन्यते, वैसे मानता है मैं करता हूं। परंतु भगवान कृपा करने के लिए जब जब धर्म की ग्लानी होती है, धर्म को नष्ट करने का पूर्णतया प्रयास किया जाता है, भगवान कहते हैं मैं युगों युगों में अवतार धारण करता हूं। तो भगवान आते हैं अपनी दिव्य गुण और ऐश्वर्यों के साथ और अपनी असीमित शक्तियों के साथ असंभव कार्य संभव करते हैं, समुद्र पे सी बांधना या गोवर्धन को उठाना, ऐसे असीमित असंभव कार्य बिल्कुल खेल खेल में कर देते हैं भगवान, और उसके द्वारा अपनी लीलाओं के द्वारा, अपने गुण के द्वारा, अपने नाम की शक्ति के द्वारा हम जीव को बोध कराते हैं, ज्ञान बोध कराते हैं। एक प्रकार ये है, आप देखो भगवान की उन दिव्य लीलाओं को रोज तो आते नहीं है, तो उनकी दिव्य लीलाओं को स्मरण करने के लिए इन ग्रंथों की रचना करके गए, इन ग्रंथों की रचना करके गए कि ताकि हम हर समय हर युग में इन ग्रंथों का अनुशीलन कर सकें, उनका सेवन कर सकें। सद्गुरु संगति जो इस तात्पर्य में आया है, सद्गुरु और संगति के द्वारा हम इन शास्त्रों को समझ सकें और हमारे ज्ञान चक्षु को खोल सकें। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानंजनाशरया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम उन शास्त्रों को समझ सके। भगवान ने जो अपने दिव्य गुण रूप लीला आदि जो प्रकट किए उनको हमें वापस भूल न जाए, इसलिए शास्त्र दिए, ये ग्रंथ दिए। ग्रंथ को समझाने के लिए हमें आचार्य भेजे गए हैं, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, श्रीपाद वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य और शिल प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर, ऐसे एक से एक महान आचार्य भी भेजे। क्योंकि बार 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 हर समय में 5-25 साल हुए नहीं कि गड़बड़ शुरू, लोग शास्त्रों को भूलना शुरू। हम में से कितने लोगों का ये अनुभव है जो 45-50 साल के हैं तो कहते कह सकेंगे हाँ हमारे दादाजी ऐसे करते थे पर हम लोग ऐसा नहीं करते थे, अब इस कौन में आके ऐसा करने लगे, है ना। हमारे पिताजी ऐसा करते थे, कई ऐसे ब्राह्मण लोग भी मिलते हैं, हमारे पिताजी प्रकांड पंडित पर मैं तो नौकरी करता हूं, जॉब करता हूं, अब मैं तो पंडिता ही नहीं करता हूं, पूजा पाठ नहीं करता हूं, मैं तो जॉब करता हूं, नौकरी करता हूं, तो भूल गया। तो फिर भगवान आचार्य भेजते हैं। इसके आगे के तात्पर्यों में श्री प्रभुपाद जी ने कहा हमारी हरे कृष्ण कीर्तन मंडलियां विश्व के कोने कोने में जाती हैं और लोग उसको स्वीकारते हैं। तो आचार्य ऐसे प्रावधान, ऐसे प्रयोजन करते हैं कि संसार के कोने कोने में जीव कीर्तन मंडलियों के द्वारा, ऐसी भागवत कक्षाओं के द्वारा, प्रचार के द्वारा, रथ यात्रा के द्वारा ऐसे प्रयोजन किया जाता है। ग्रंथों को देते हैं, आचार्यों को देते हैं, ऐसे सारी योजनाओं को देते हैं आचार्यगण, और जीव का कल्याण हो सके। और वे सारे जीव जब कोई दर्शन करना चाहे कि ये सब सीख रहे हैं, ये सब सुन रहे हैं, ये सब पढ़ रहे हैं, इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसका दर्शन कैसा होता है? उसका दर्शन ऐसा होता है ना? उसका दर्शन कितना सुंदर है, ये रहे भगवान, इसका दर्शन, ये पत्थर नहीं है। बात करके देखो हमारे गिरधारी जी से, कितने लोगों ने बात की है मेरा ये खो गया, वो खो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा नहीं। चलो ऐसी भी बात कितने लोगों ने की, सच बताइए, किसी ने बात नहीं की गिरधारी से आज तक? शर्माने की क्या बात है इसमें कि नहीं नहीं मैं तो एक नम्र भक्त हूं, मैं नहीं दिखाना चाहता कि मैंने बात की, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपस में कृष्ण कथा कर रहे हैं तो उसमें नहीं संकोच हाथ उठाना चाहिए बेधड़क, जैसे लोग बेधड़क क्रिकेट ऐसे रास्ते में ट्रेन में भी चल के ऐसे सुनते हुए जाते हैं। हाँ मैं देखो इस जमाने के अनुसार हूं, क्रिकेट प्रेमी हूं, तो मैं ट्रेन में भी रेडियो लगा के जाता हूं। और हम लोग शर्मा दे, नहीं नहीं मैं तो एक नम्र भक्त हूं, मैंने गिरधारी से बात की, ऐसे मुझे किसी को बताना नहीं। लेकिन आपस में ऐसे सत्संग में कथा में बता सकते, बाहर जाके नहीं बताना। कभी गिरधारी से बात नहीं की? जगन्नाथ से, चलो जगन्नाथ से, किसी ने जगन्नाथ से बात किया होगा, बोले मैंने तो गिरधारी पूछा, मैंने तो जगन्नाथ से बात नहीं की, किसी ने कभी किया ही नहीं बात। अरे अपना दुखड़ा भी नहीं रोए क्या? हाँ आप तो रोज करते हैं ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा, हर्षित माधव प्रभु रोज करते हैं। नहीं तो 2 घंटा जाएगा, वो बताएंगे ना कि वो क्या बात करते हैं, तो 2-3 घंटा चला जाएगा, है ना प्रभु जी? बस एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हरी वो, देखो भक्त को बिंदास होना चाहिए, ये बिंदास है। ये बिंदास भक्त हैं, चाहे जो दुनिया सोचे बोल दिया। भगवान का गुणानुवाद करना है तो संकोच की इस बात का, धन्य है आप इस बात पर, इस बात पर। एक मिनट नहीं तो ये मैनेजमेंट करो। तो कम से कम वैसे दुखड़ा रोना नहीं चाहिए, पर रो तो लो। अभी इनसे नहीं रोएंगे तो हमारे रूप गोस्वामी स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि मत रोइए, लेकिन आखिर में अगर भक्त चारों ओर से त्राही त्राही हो जाए तो कहां जाए, जाए तो कहां जाए, किसकी शरण में जाए। दुखड़ा भी रो सकते हैं, फिर दुखड़ा नहीं रोना है तो और क्या करना है कभी और कक्षा में बताएंगे, लेकिन भगवान से बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए। ये बोलते हैं हमारे, आप लोगों को बता दूं, हमारे जितने पुराने भक्त हैं उन सबको पता है हमारे गिरधारी प्रकट ठाकुर हैं, साक्षात हैं। आप बात कीजिए, आपको जवाब देते हैं, करके देखिए, शायद आपने किया नहीं होगा, करके देखिए। ये तो एकदम बोलते ठाकुर है, जिसको हम कहते हैं प्रकट ठाकुर। महाराष्ट्र में कहते जागृत देवा है, जागृत देव। मराठी मदी मनता जागृत देवा है आमचा, ऐसा है। तो इसलिए भगवान ने अपने अर्चा विग्रह, शास्त्र, आचार्य और हरिनाम कीर्तन, आचार्यों के द्वारा अनेक प्रावधान, अनेक योजनाएं, ताकि ये भगवान की अनुग्रह की बारिश है, अनुग्रह की बारिश है, वर्षा हो रही है। किस लिए? तो कह रहे हैं निवृत्ते, निवृत्ते, अब निवृत्त हो जाओ। किस बात से? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से। किस बात से निवृत्त होना है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से। क्यों? इससे आपका आत्मा का लाभ होगा निसंदेह। आत्मलाभाय च इष्यते, बोले इसी उद्देश्य से यह सृष्टि हुई है, ये भौतिक जगत भी और इसके विधान भी, ये भौतिक जगत भी और इस भौतिक जगत के जो भी विधान है, दुखकारी सुखकारी, वो सारे विधान है आपके आत्मलाभ के लिए। कभी हम सोचें कि यदि हमारी इच्छाएं हैं भगवान से हम विद्रोह करके अलग तो हुए, ये भौतिक जगत बनाते ही नहीं तो हम क्या करते हैं अंतरिक्ष में, आकाश में क्या करते? कभी सोचिए, इतनी भयावह स्थिति हो जाएगी। अगर गहराई से सोचेंगे तो हम पागल भी हो सकते हैं, अगर ये सोचेंगे कि भगवान ने ये भौतिक जगत नहीं बनाया होता तो हम सारे विद्रोही, अनगिनत विद्रोही जीव अंतरिक्ष में क्या करते हैं? केवल कभी गहराई से एकांत में सोचना, हम पागल हो जाएंगे इसको सोचते हुए। तब कोई भी नास्तिक भी भयभीत हो जाएगा, हिल जाएगा, वो कहेगा हाँ भगवान है, मैं नास्तिक नहीं हूं। कोई कहता है ना कि भगवान दिखाओ, ये रहे भगवान, ये रही उनकी अनुकंपा, आप क्या देखना चाहते हो? भगवान देखना चाहते हो कि भगवान की कृपा देखना चाहते हो? ये रहे भगवान, ये रही भगवान की अनुकंपा, आप फिर भी उस कृपा की वर्षा में आप नहीं भीगना चाहते हैं, तो भोगो दुख, तो आपका आत्मलाभ नहीं होगा। हम सबको निवृत्त करना है, और वो निवृत्ति, और एक बात जो शायद आगे के श्लोक में आएगी, क्योंकि मैंने इसका आज अभ्यास नहीं किया, मुझे बताया गया था 54वां श्लोक परियठाने शायद आगे आनी ही चाहिए। वो निवृत्ति कब करनी है, एकदम महत्वपूर्ण बात, शायद आगे आनी ही चाहिए, ये भागवतम है। ये निवृत्ति कब होनी चाहिए, निवृत्ति कब होनी चाहिए? सर जी बताइए, कब निवृत्ति हुई आपकी एट द एज ऑफ, निवृत्ति कब होनी चाहिए? ये नहीं, निवृत्ति आमतौर पर जो आदमी सोचते रिटायरमेंट 58, 60, यह हम, ये हमारा विचार है, अभी क्या निवृत्ति। लेकिन श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज कहते हैं निवृत्ति कब कर देनी चाहिए, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता नाम इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यम धू तदर्थनम, है कि नहीं? कि इसको जब भी से समझ में आए, ऐसे तो कुमार अवस्था से करनी चाहिए निवृत्ति, परंतु जब भी से समझ में आए हमें उसी क्षण से निवृत्ति ले लेनी चाहिए, वीआरएस ले लेना चाहिए इस भौतिक जगत से। वीआरएस लेते ना, वॉलेंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, तो हमें तुरंत वीआरएस की एप्लीकेशन डाल देनी चाहिए ठाकुर जी के चरणों में, सदगुरु के चरणों में, गुरुदेव बहुत भटका, बहुत पाप किया, बहुत गलत सलत किया, अब नहीं, अब मुझे ये निवृत्ति लेनी है, अब मैंने जब ही से लेनी चाहिए 5 वर्ष से। और इसलिए कितनी सारी कक्षाएं, काउंसिलर, ये वो, कि जो भक्त गृहस्थी बनकर के भक्ति में आते हैं तो उनको बच्चों को भी सिखाया जाता है, ये सारी इसलिए है कि भगवान के अनुग्रह का हम लाभ ले सकें। हरे कृष्ण। कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए, कि तैयारी नहीं थी। कोई प्रश्न ले सकते हैं?
प्रश्न,
कोई जिज्ञासा? बोलिए प्रभु जी, बोलिए। हाँ जी बोलिए। पर्सनली मतलब पर्सनली प्रश्न क्लास के बाद, ठीक है, क्योंकि समय 9:30 हो गए हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे, वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। नीचे आ जाओ।